میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں، یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک راستے میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ کہتے ہیں، I carried my mother on my shoulders for 6 miles۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں۔ Am I free from the rights of my mother؟ کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماں باپ ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن میں، حدیث میں بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ ماں جو بس ماں ماں ہوتی ہے، لب ماں کہتے ہیں منہ میں مٹھاس سے آ جاتی ہے، شی از مائی مدر، ماں کہتے ہیں تو ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، یہ میری ماں ہے۔ ماں خود ایک بڑا میٹھا، چاہے اس کو کسی بھی دنیا کی لینگویج میں آپ کہہ لیں، اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ ماں کہہ لیں، موم کہہ لیں، جو بھی ہمارے عموماً چل رہا ہوتا ہے، میری امی جان ہے، ڈائریکٹلی امی کے ساتھ کیا لگ جاتا ہے، جان لگ جاتا ہے۔ تو جیسے ہم ماں کا نام لیتے ہیں تو ایک شفقت اور ایک نرمی اور ایک پیار اور محبت کی مٹھاس منہ میں آ جاتی ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں my father یعنی میرے والد ہیں، یہ میرے ابو ہیں، تو یہ ایک ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیے ہیں، یہ مطلب میرا سب کچھ ہے۔ تو والدین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو 7 حج کندھے پر لے کر کرائے۔ کتنے حج؟ 7 حج کندھے پہ لے کر کرائے، یعنی عرفات، مینا، مزدلفہ وغیرہ کندھے پہ لے کر گیا۔ 7ویں حج میں خیال ہے کہ شاید اب میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہو۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس شخص، ایک رات سخت سردی تھی، ٹھنڈ کی رات تھی، تو چھوٹا بچہ تھا، اپنی ماں کے پاس سو رہا تھا، کہ تو نے بستر خراب کر دیا، نجاست۔ ماں نے رات کو اٹھ کر بستر دھویا، غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، اسی لیے بستر پر خود سوئی، یعنی گیلی جگہ پر، دھونے کے بعد گیلی جگہ پر خود سوئی، اور تجھے رات بھر اپنے سینے پر رکھا۔ ابھی تو اس کی ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکا۔ ये माँ होती है जो दिन रात तकलीफ उठाते हैं। आपके घर में छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन, लाइक छोटे छोटे 7-1.5 साल, 6 महीने के, इनके साथ देखा कभी किस तरह माँ बाप चल रहे होते हैं? अपने तो नहीं चल सकते। माँ को ले लेके दौड़ रही होती है, माँ भाग रही होती है, हमारे लिए खाना बना रही होती है, हमारे लिए काम कर रही होती है, वो वहां से रो रहा होता है, उसको उठा रही होती है, उसको चुप करा रही होती है। बल्कि हम, अगर वो हमारे पास आता है तो हम भी उसको दे देते हैं, माँ संभालेगी, माँ संभालेगी। हमारी इस एज में भी ये मंजर मौजूद है कि हम जब छोटे थे तो माँ ने हमको कैसे पाला था, वाले साहब किस तरह मेहनत किया करते थे। तो अल्लाह पाक हम सबको अपनी अम्मी और अब्बू के एहसानात को समझने की तौफीक अता फरमाए, इनकी खिदमत करने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए, और इनके साथ नरमी इख्तियार करने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि बंदा कुछ भी कर ले प्यारे इस्लामी भाइयों, वो अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता। माँ बाप के साथ मोहब्बत करें और माँ बाप की ताजीम करें। ताजीम, यू नो ताजीम, वो आए तो आप खड़े हो जाएं, जैसे ही माँ बाप आते हैं, वालिदैन आते हैं, पेरेंट्स जब भी आएंगे आप क्या करें? खड़े हो जाएं। अच्छा, आप जहां बैठे हैं ऑफर करें, प्लीज यू सीट हियर। अब उनके सामने खड़े रहें, उनको पानी पेश करें, अम्मी अब्बू पानी, और उनकी बात माने। अगर अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ की बात करते तो नहीं माननी होती, अदरवाइज उनकी बात माने। कोई चीज इनको लाकर दें, कुछ चीज इनको पेश करें, कुछ चीज इनको खिलाएं। और अगर बेबी के वो 50+, 55+, 60+ हैं या इससे ज्यादा हैं, तो मेरी आपसे दरखास्त है, या चले माँ बाप तो बड़े होते हैं, बच्चों से बच्चे, माँ बाप तो छोटे होते ही नहीं है, तो जब भी कोई मौका मिले अपने हाथों से अपनी अम्मी अब्बू को निवाला खिलाएं। मना करे तो कहें कि जिस तरह आप बचपन में हमें खिलाते थे, आज हमको मौका मिला हम भी आपको खिलाएंगे। इससे मिलती है माँ बाप की दुआ। जब माँ बाप खुश होते हैं ना, फिर इंसान की कामयाबी को, उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। जिस दुनिया का कामयाब तरीन शख्स आप उसको ले लें, हर वो मुसलमान जिसको कामयाबी नसीब हुई, आप उससे बात करेंगे तो उसके पीछे उसके माँ बाप की दुआएं जरूर मिलेंगी। ये हो ही नहीं सकता कि माँ बाप नाराज हों और इंसान कामयाब हो जाए, ये नहीं हो सकता। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, इनके एहसानात को समझने की, इनके एहसानात को मानने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारा अंदाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम में जलवा फरमाते हैं, जैसे सितारों में चांद होता है। अचानक एक बापर्दा खातून हाजिर होती हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अपनी चादर बिछा देते हैं। देखने वाले हैरान थे कि ये कौन खुशनसीब बीवी है। तो मालूमा जब हुई तो फरमाया कि ये मेरी माँ हलीमा सादिया है, दूध माँ। आपने दूध क्या दादा था? हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का, ये अबू दाऊद शरीफ हदीस सुनाई मैंने, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रजाई वालिदा, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे चाहने वाले, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। आका से मोहब्बत, आका से प्यार, अल्लाह का शुक्र है हम सब करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा को कभी अदा भी करें कि माँ आए, ये तो आपकी रजाई वालिदा थी, दूध वालिदा थी, है ना, आपने इनका दूध पिया था, और इनकी किस कदर आपने इन पर करम नवाजी फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब वो हाजिर होती हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए अपनी चादर बिछा देते हैं। क्या कभी हमें याद पड़ता है कि हमने अपने माँ बाप के साथ ऐसा कोई नेक और उम्दा सुलूक किया हो? नहीं किया तो प्यारे इस्लाम भाइयों गौर करें कि हमको करना चाहिए या नहीं, और अगर करना ही चाहिए और वाकई करना चाहिए तो आज से ही शुरू करते हैं। चाहे आप मदनी चैनल पर हैं, ख्वाह आप सोशल मीडिया पर हैं, ख्वाह यहाँ फिजान मदीना में बयान सुन रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में है जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। एक हदीस में है जिसने अपनी वालिदा के पांव चूमे तो ऐसा जैसे उसे जन्नत की चौखट को चूमा। शायद ही कोई आधा कई हदीस हम जमाने से सालों से तो शायद आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, शायद ही कोई हो जिसने अपनी मां के कदमों को चूमा, शायद ही कोई। बाद ममालिक में हो सकता है कि एक तादाद होगी, लेकिन मैंने बाद ममालिक के अंदर देखा है कि वालिदैन के साथ वो कल्चर है ही नहीं। एक हमारे एक नेशनल वैल्यूज भी हैं, हमारे एक इस्लामी वैल्यूज भी है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामी वैल्यूज आर इग्नोर्ड इन सोसाइटी दिस डे। एज अ रिजल्ट आवर मॉरल हैव बीन करप्टेड टोटल। यानी माँ बाप के साथ ही जब हमारे इस्लामी वैल्यूज और हमारे ये इस तरह की चीजें ना रहे तो किसके साथ रहेंगे? तो शायद ही कोई हो कि जो अपने वालिदैन के साथ इस तरह उसने सुलूक करता हो, वालिदैन की इसने जैसे मैंने कहा माँ की कदमों को चूमा हो। अब तो खैर कितनों के तो माँ बाप दुनिया से चले गए, लेकिन अगर हैं तो इनकी कदर कीजिए, इनके हाथ चूमिए, इनकी दस्तबोसी कीजिए, इनकी खदमत कीजिए, इनको कुछ प्यार और मोहब्बत की बातें बताएं। हत्ता कि जब इनके साथ आप बैठे तो इनसे बातें करें। अब हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि जब वालिदैन भी आते हैं तो अपने मोबाइल फोन पे बिजी रहते हैं और बिल्कुल जवाब ही नहीं देते। एक माँ अपने औलाद को बच्चों को बुला रही थी, एक माँ अपने बच्चों को बुला रही थी, बच्चों ने जवाब नहीं दिया, बच्चे ने जवाब नहीं दिया, माँ नाराज हुई और उसको बददुआ दी, उसी वक्त गूंगा हो गया। माँ की दुआ यूं कबूल होती है, उसी वक्त गूंगा हो गया। अब हमारे यहाँ ये माँ बुलाती है बहुत ज्यादा, हम क्या कर दिया कमी, फिर आवाज देगी यस कमिंग। अच्छा कर क्या रहे हो भाई? कमिंग कमिंग, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर कमिंग? तो पता चले कि ये मिस्टर कमिंग जो है ना वो मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, अभी वो गेम खेल रहे हैं। कमिंग, अच्छा इसमें मिस हो गया कुछ, और अब वो कुछ बोलेगा उल्टा सीधा, फिर कहेगा क्या है, व्हाई आर यू शाउटिंग, डायरेक्टली शाउटिंग। माँ बोले कुछ नहीं जा, शाउटिंग तो दूर होता था, बुलाता था, मैं बचपन में दौड़कर आती थी, खाना छोड़कर आती थी, अपना आराम छोड़कर आती थी। जब तेरे थोड़े से बिस्तर पर रोने की आवाज होती थी तो मेरी नींद उड़ जाती थी, मुझे डर लगता था कहीं तेरे अबू ना उठ जाएगा, ऑफिस सुबह उनको जाना है। और आज मुझे कहता है कि व्हाई आर यू शाउटिंग, यू ऑल मूवे, देख नहीं रही थी मैं क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे? तो ये आज हमारा कल्चर है, मां बुलाती है जवाब नहीं देते, बाप बुलाता है जवाब नहीं देते, अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। मां कहती है मुझे कहीं लेके जाओ, मां सॉरी बहुत बिजी लाइफ है, अम्मी बहुत बिजी लाइफ है, आपको नहीं पता आपके टाइम में वो बिजी नहीं था, अम्मी के टाइम में ज्यादा बिजी था, आपके टाइम में तो मशीन भी है, आपके टाइम में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी भी है, आपके टाइम में तो बहुत कुछ है। अम्मी उस पर धुआं फूके मार मार कर चूल्हा जलाती थी, आपको तो ये भी नहीं करना पड़ता। वो टाइम उस टाइम में बहुत फर्क है, आज इजी है, कल बहुत बिजी था, आज हमने खुद अपने आप को इतना बिजी खुद ही किया हुआ है। उस वक्त सबके पास टाइम कैसे निकलता था? अच्छा फिर प्रॉब्लम यह कि ये डर भी नहीं लगता कि जो मैं कुछ कर रहा हूं अपने वालिदैन के साथ कल मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि टाइम तो बदल रहा है ना। आप जब आप कह सकते हैं कि आज आपके पास टाइम नहीं है तो कैन यू इमेजिन कि कल आपके बच्चे आपको क्या कहेंगे? कितना हम रिस्क खेल रहे हैं। एक वालिद साहब बड़े बुजुर्ग और बीमार और नाबीना भी हो गए थे, तो अब घर में वो प्रॉब्लम था बच्चे को कह यार ये वालिद बूढ़ा और ये क्या करें, क्योंकि उमूमन ये है कि जब तक बाप कमाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक एटीएम मशीन, और जब बाप कमाता नहीं है ना तो बड़ा मतलब कि वो मजा नहीं आता बाप के साथ ना, तो वो वालिद साहब के साथ इतना ज्यादा अच्छा सुलूक नहीं करता था बेटा। अच्छा जो बहू थी उसको भी बूढ़ा सुस्ता समझ में नहीं आता था, वो पीछे पड़ी रहती थी कि किसी सूरत अपने बूढ़े बाप को निकाल, बूढ़े बाप को निकाल, बूढ़े बाप ज़ईफ था, अंधा था, नाबीना था, कहाँ निकाले, तो वो भी कोशिश करता था किसी सूरत बुरा बाप घर से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। बाप बुरा घर से कैसे निकले, कहाँ जाएगा। एक दिन सर्दी की रात में बेटे ने बड़ा जोर दिया और यूं था कि बाप को कहीं ले जाए ना, छोड़ कर आ जाए। अच्छा उसका जो पोता था ग्रैंड सन, वो बड़ा मोहब्बत करता था दादा से, वो बाप को समझाता था, लेकिन वालिद साहब की समझ में आता नहीं था, वो पीछे पड़ा हुआ था कि बूढ़े को कैसे घर से निकालो, तो बूढ़ा मां ज्यादा उसको बोझ लगता था, वजन लगता था। एक दिन वो छोड़ आया अपने बाप को बाहर, वो कहीं बिठा कर आ गया सर्दी में। अच्छा ग्रैंड सन उसके साथ ही इसका पोता बोलेंगे, तो पोता बोला मैं भी दादा के साथ। तो उसको सर्दी रात थी ना, ठंड थी, उसको सर्दी लगी पोते को, तो वो घर गया और कहा कि अब्बा चादर तो दो, दादा क्या ओढ़ेगा। तो एक पुरानी सी मेली सी फटी फुटी सी चादर बाप ने दे दी पोते को कि जा ओढ़ा दो। उसने कहा नहीं हाफ करो उसको। बोला हाफ क्यों करो। बोला हाफ करो, आधी तुम रखो। वाई बोला आज मेरा दादा बूढ़ा हुआ है ना, तुम उसको ये चादर दे रहे हो, जब तुम बूढ़े होगे ना तुम्हें मैं बाहर निकाल कर आधी तुमको दूंगा। यानी ये बात इतनी इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन है, जिसको हमारे उर्दू में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा ये इतनी कॉमन बात है, जैसा करोगे वैसा भरो, मगर करते वक्त सोचते नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, ना माँ के साथ, ना बाप के साथ, ना किसी और के साथ, कि मेरे साथ क्या होगा। इतना हम लोग माँ बाप के लिए, हमारे पास स्पेस ही नहीं है, टाइम ही नहीं है वालिदैन के लिए। अगर हम अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप की कोई, यानी मैंने देखा है कई लोग परेशान होते हैं, आप में से कई नौजवान होते हैं, बल्कि नौजवान नहीं, कई बाप वालिद होते हैं जिनके अपने वालिद से वालिदैन जिंदा होते हैं, आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी अपनी औलाद होगी उनके वालिदैन भी जिंदा होंगे, अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सलामत रखे। तो वो मतलब के परेशान होते हैं ना, कभी घर की परेशानी, मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूं, कभी घर की परेशानी, कभी कारोबार की परेशानी, और कोई इश्यूज आ जाते हैं, फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, बच्चों के इश्यूज आ जाते हैं, माँ बाप के सामने वो इजहार ही नहीं करता, बल्कि अपनी वो जो इसका जो परेशानी वाला जो मामला है वो अपने माँ बाप के सामने अपना मूड ऑफ लेकर आएगा। वालिदैन कहेंगे बेटा क्या हुआ, नहीं आपको नहीं समझ आएगी, अरे समझ नहीं है कि तुम्हें बड़ा किया, तुम बाप के बाप, तुम बेटे भाई, तुम्हारी औलाद होगा, तुम्हारे माँ बाप की समझ नहीं आएगी, नहीं आपको समझ नहीं आएगी, प्लीज 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 लीव मी अलोन, चाहो ना भैया मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा बहुत परेशान हूँ, हाँ कारोबार की परेशानियां, घर की परेशानियां, कर्जे की परेशानियां, बीमारी की परेशानियां, कोई प्रॉब्लम आ गई यहाँ, कोई डिजीज आ गई यहाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको। अगर इतने प्रॉब्लम है तो खुश नसीब हो तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में, खुश नसीब हो तुम्हारे वालिद आपके घर में। जब इतने प्रॉब्लम है तो इन्हें इग्नोर करने के बजाय इनके कदमों में बैठ के कहो ना अम्मी जान दुआ करो, माँ दुआ करेगी अल्लाह ताला पहाड़ बटा देगा, माँ दुआ करेगी अल्लाह ताला परेशानी दूर फरमा देगा। दुआ हमेशा कबूल होती है, उनमें से एक बाप है कि जब अपनी औलाद के लिए बेटे के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल फरमाता है। माँ के कदमों में सर रखो ना, बाप का हाथ पकड़ कर रोना, वो दुआ कर दो, मैं पैसा नहीं दे सकते ना दे, ये सोर्स नहीं लगा सकते ना लगाए, अरे इनकी बात वहां चलेगी जहां का तस्वर भी नहीं कर सकते आप, ये आपके मेरे रब की बारगाह में कहेंगे मौला मेरा बेटा तकलीफ में इसके लिए आसानियां पैदा कर दे। करना क्या है बाबा, सिर्फ जुबान ही चलानी है, हाथ उठाने
وہ کہہ دے رہا ہے کہ یا اللہ میرے بچے پر کرم کر دے، یا اللہ میرے بچے پر رحم کر دے، اس کی مشکل آسان فرما دے، اس کی بیماری دور فرما دے، اس کے قرضے اتر جائے، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی انشاءاللہ عزوجل، لمحوں میں کام بدلتے آپ نظر آئیں گے، یا آنا منہ چڑھا کر بیٹھے ہوئے او آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، بہت پرابلم ہے، کتنا بڑا پرابلم ہے بھائی، دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور ماں باپ کی دعا، ان کی دعائیں نہیں ہیں، یہ جو بھی ہمارا جو اسپیشلی جو ینگسٹر، میں تو ہر عمر والے کو کہتا ہوں کہ جو بھی پریشانی ہے، میں کہتا ہوں پریشانی کے لیے آپ والدین کہ ہم جاتے رہے بزرگوں کے پاس بھی کہ نہیں جاتے، اور الحمدللہ ان کے پاس جاتے ہیں اس امید پر کہ یہ دعا کریں گے اللہ دعا قبول فرما دے گا، یا جس کے پاس پیسہ ہے ہمیں لگتا ہے یہ پیسہ دے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن میرے گھر میں تو ماں ہے یار، میرے گھر میں تو والد ہے یار، مجھے غم کس چیز کا، مجھے پریشانی کس چیز کی، میرے گھر میں تو دعا کیا دروازہ میرے گھر کے اندر موجود ہے، یعنی جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں نا ان کے لیے یہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کیا پتہ نہیں یہ کہتے نہیں کہتے، اپنے ملک پاکستان میں دیگر سب ان کو کہتے ہیں جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار دعا کا دروازہ بند ہو گیا، کبھی سنا ہے؟ ارے جب یہ دروازہ کھلا تھا تو کتنی بار دستک دی دروازے پر، آج کہہ رہے دعا کا دروازہ بند ہو گیا، بے روزگاری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور ایگزامینیشن ایشوز ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، میں آج تمام اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں مشورہ دے رہا ہوں، اگر اللہ کی رحمت آپ کے ماں باپ زندہ ہیں آپ پریشان نہ ہوا کریں، سیدھے ماں باپ کے پاس جائیں کہ ابھی دعا کر دو، ابو دعا کر دو، تو اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ سے محبت کرنے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، اس سے دوبارہ عرض کی اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں، تیسری بار عرض کی اس کے بعد کون؟ اس مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا تمہاری ماں، اس نے پھر عرض کی اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہارے والد، پھر اس قریبی کا زیادہ حق ہے، پھر جو اس کے بعد یعنی پھر جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں بلڈ ریلیشنز کو کہتے ہیں، وہ پھر اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ والد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور والد کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، حدیث میں والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے، مڈل ڈور، چاہے تو اسے ضائع کر دو اور چاہے تو اس کی حفاظت کر دو۔ باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے، آج بھی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کی نافرمانی سے اللہ پاک ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے، دور بہت نازک ہے اسپیشلی والدین کے تعلق سے، بہت نازک دور ہے، ہمارے ہاں ماں باپ کو بہت اگنور کیا جا رہا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا یہ ٹاپک لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہمیں یہی پرابلم ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی اس کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، ہماری نسلوں کو کیا ہوگا، ہمارے بچوں کو کیا، دوسرا ہے کہ یار یہ بات نہیں مانتے، گھر میں پرابلم ہے، اچھا ان کا پرابلم ماں باپ کو بھی اس کو سمجھ میں آتے جب یہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ میری بات نہیں مان رہا، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ نشہ کرے گا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شراب پیے گا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پڑھائی نہیں کرے گا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے دوست ایسے ہو گئے ہیں ایسے ہو گئے ہیں، گھر میں لیٹ آتا ہے، بیٹی لیٹ آتی ہے، وہ گرل فرینڈ میں چلا گیا، وہ بوائے فرینڈ میں چلی گئی، اب یہ جب سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو بھی ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، جبکہ معذرت کے ساتھ ویری سوری ٹو سے یہ راستے بچپن میں ہی ہم ہی نے اس کو دکھائے دے، رائٹ، یہ ہم ہی نے اس کو راستے دکھائے دے، یہ انہیں راستوں پر چل کے ہی بڑا ہوا ہے، اور ہمیں اس وقت نہیں سمجھ پڑی تھی، جب ہم سمجھتے تھے کہ فلاں کا بچہ یوں ہو گیا، فلاں کا بچہ یوں ہو گیا، تو آپ کا بچہ یوں نہیں ہوگا، وہ بھی تو اسی راستے پہ چل رہا ہے، تو ایک تو بڑا پرابلم ہمارا بھی ہے کہ ہم خود ہی اس وقت جب ہمیں سمجھ جانا چاہیے ہم سمجھ نہیں پا رہے،
और हम अपने बच्चों को रास्ते पर चला देते हैं, ये रास्ते पर चल के बच्चा फिर ऐसा ही बनता है जैसा कि हम देख रहे होते हैं। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सबसे पहले अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फैसला करें, जैसा बीज बोएंगे वैसे फसल आएगी। सबसे पहले अपने बच्चों के लिए अच्छा फैसला करें कि हमारे बच्चे कहाँ बड़े होंगे, कैसे बड़े होंगे, किस माहौल में बड़े होंगे, इनका एनवायरमेंट क्या होगा, आप इनको कैसा कल्चर देना चाहते हैं। आप बोलो मेरे घर में मैंने माहौल ऐसा नहीं रखा था, आपके घर में बच्चा था कितना, आपका बच्चा तो तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तो बाहर रहा है, घर में आया है तो घर में तो 1.5-2-3 घंटे ही मुश्किल से वो जागा, इसके बाद तो सोया है वो, राइट। तो 2-3 घंटे में आप अपने घर के कल्चर की क्यों दुआई दे रहे हैं कि मेरे घर का कल्चर ऐसा है, मेरे घर का कल्चर ऐसा है, हमारे में तो यूं भी नहीं होता तो हम तो गाली भी नहीं देते, हमारे घर में तो सारे नमाजी पढ़ते हैं, हमारे घर में सारा ऐसा होता है, हमारे घर में तो सब यूं हो रहा होता है, मगर पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्या नहीं होगा, आपको पता कैसे नहीं क्या हो गया। पेरेंट्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के ताल्लुक से सोचिए। आप मियां बीवी हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, आप बैठकर फैसला करें, अभी आपका बच्चा 1.5 साल का 2 साल का 3 साल का होगा, जिनके घरों में इस तरह के बच्चे हैं, ये बेसिकली मैं उनको एडवाइस कर रहा हूं कि ये क्या करें हम इसका। अगर हम इसको इसी तरफ लेकर चलेंगे जैसे कि सोसाइटी का चल रहा है रवाज, तो फिर ये सोसाइटी जैसे जा रही है वैसे चलता चला जाएगा। अब गाड़ी जिस ट्रैक पर जाएंगे गाड़ी उसी रूट पर जाते जाते वही मंजिल पर पहुंचेगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आप डालें इसको किसी और रूट पर वो पहुंचे किसी और मंजिल पर, ऐसा नहीं होता। आप अपने बच्चे को इस्लाम और दीन के अमल के दामन में डाल दें, इस्लाम उसको बचा लेगा, इस्लाम और दीन को बचाएगा आपकी औलाद को, आपकी मेरी हम सबकी औलाद के बारे में। और फिर लुक आफ्टर करें, देखिए कभी घर में पौधा लगाया है, इसको पौधा लगा कर छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते, इसकी कितनी हिफाजत करते हैं, क्योंकि अभी ना ये पानी ले सकता है ना खुद को कोई और चीज सेव कर सकता है। आप जितना पौधे की हिफाजत करते हैं हर तरह से उसकी चीजों को देखते हैं, इसी तरह बच्चे की हिफाजत करते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा अपना पानी खुद लेगा और अपना फल खुद देगा, फिर इंशाल्लाह के साय में रहकर आप मदीने की ठंडी ठंडी हवाओं के मजे लेते रहे। उसको आलिम बनाएं, उसको हाफिज बनाएं, उसको नेकी के रास्ते पर लाएं, उसको परहेजगारी के रास्ते पर लाएं, उसको मुबल्लिग के रास्ते पर लाएं। अल्लाह ताला की रहमत पर नजर रखे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी औलाद अगर अल्लाह की राह में उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए रहेगी, ये अल्लाह की रहमत से ये इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होगी, आखिरत में भी कामयाब होगी और आपकी बनकर रहेगी इंशाअल्लाह, आपकी बन गया। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वली वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का।